بسم الله الرحمن الرحيم. جوان صورتوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم اپنے اس دور کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اگر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کل کی بات تھی. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور خصوصاً جو خم جا رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ خم میں وقت اور تیزی سے گزرتا ہے. تو اگر توجہ کم ہو گئی تو اس کا نقصان آپ واپس ہندوستان لے آئیں گے, اور اگر آپ نے اپنے اوپر کام کر لیا تو پھر جو یہاں کی برائیاں ہیں اس کو سمجھ پائیں گے. دین کی تعلیم دوسری تعلیمات سے بہت مختلف ہوتی ہے, بہت مختلف ہوتی ہے. اس میں انسان کو دین کی تعلیم میں سب سے پہلے رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر دین اس پر اثر نہیں کرتا تو اس کے ذریعے سے کسی پر اثر ہونے والا نہیں ہے, آسان نہیں ہے. جو خود مقناطیسی کیفیت ایجاد نہیں کرے گا وہ دوسرے کو وہ میگنیٹزم نہیں دے پائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب اس ارادے سے حرکت ہوتی ہے کہ ہم جا کر کوئی چیز حاصل کر کر واپس آئیں گے, تو آج کا دور اس چیز کو کہ جو آپ لوگ حاصل کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے اس پر میں گفتگو کروں گا. آپ جو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, ہم جب 1983 میں لگ بھگ 34 سال پہلے گئے تھے, انقلاب کو آئے ہوئے 5 سال بھی نہیں ہوئے تھے, انقلاب اسلامی, اور قوم ابھی تبدیل ہو رہا تھا, بالکل چھوٹا سا شہر تھا. مدرسے میں حمام بھی نہیں تھا تو باہر جانا پڑتا تھا, کبھی سردی میں, اور سردی کبھی وہاں زیادہ ہوتی ہے تو تیل بھی مہیا نہیں ہوتا تھا کمروں کو گرم کرنے کے لیے. اور وہاں پر کمروں کو گرم نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ 8 ڈگری کبھی 10 ڈگری مائنس چلے جاتا ہے ٹیمپریچر, تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہوتی. آج قوم بالکل بدل گیا ہے, بہت بڑا شہر ہو گیا ہے, ہاسٹلز جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہو گئی بن گئی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو مادی طور پر آپ کو سہولتیں فراہم کریں گی. تعلیم بھی اس زمانے میں ایک پیٹرن تھا, اس پر کام ہوتا تھا. 9 سال کا کورس تھا, ابتدا آپ کو عربی گرامر, اس کے بعد منطق, کچھ عقائد, پھر اس کے بعد اصول فقہ, اور پھر فقہ, جورسپروڈنس اور اسلامک لا, یہ پڑھایا جاتا تھا. آگے ہو چل کر جو ہے فلسفہ, اور اس کے بعد اصول فقہ کی اور فقہ کی بڑی کتابیں رسائل مقاصب, اور آخری میں کفایہ. یہ 9 سال کا ایک کورس ہوا کرتا تھا, ساتھ میں اس کے دوسرے اور کورس ہوتے تھے کہ جو آج جیسی نوعیت بالکل نہیں رکھتے تھے. کچھ لوگ اپنا گھر پر پڑھا لیتے تھے اونچی کتابیں, اور تعداد جو حوزے کی تھی وہ بھی بہت کم تھی. آج ہر چیز آرگنائز ہو گئی ہے, آپ کو جو سرٹیفیکیشن ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, اس کو یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ لیول سے لنک اپ کر دیا گیا ہے. یہ کوئی چیز ہمارے پاس اس وقت نہیں تھی, हम जब पलट कर आए 9 साल के एग्जाम लिखने के बाद, 4 साल दरस खारिज, तो हमको एक छोटा सा लिख कर मिल गया कि ये दरस खारिज शिरकत किए हैं और 4 साल के लिए इन्होंने किया है, और उसके बाद जो है किफाया की जो इम्तिहान था उसका नंबर और एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ बस, तो वो दौर वो था। आज जब आप देखते हैं और उस दौर से अगर मुकायसा करते हैं, कंपेयर करते हैं, मादियत मटीरियलिज्म शायद तारीख में इन 30-34 साल में, कभी भी तारीख में इंसानों की, बशरियत की, मादियत ने इतनी तेजी से सबखत नहीं की थी, इस तेजी से आगे नहीं बढ़ी थी। आप लोग वो दौर नहीं जानते। हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं था इंडिया में, कुछ कुछ बड़े शहरों में टेलीविजन 1970s में आया, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में 78 में आया, इंडिया में कलर टेलीविजन 1982 में आया, तो भी 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता था। ये जो चैनल्स आप 90s से शुरू हुए और 24 घंटे वाले चैनल और न्यूज़ चैनल और टेलीविजन में मुख्तलिफ सीरियल्स बताने वाले चैनल, इनका कोई तसव्वुर भी नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे। इंटरनेट 90s में आया है, बाद में ग्रो हुआ है, गूगल और व्हाट्सएप, ये वो तो बिल्कुल हाल ही। तो इस हद तक जो भी उलूम और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है वो फौरन की फौरन हम देखते हैं कि इंसान के मादे से इस्तेफादे को बढ़ाती गई है। मादे से इस्तेफादे को, मेयार जिंदगी भी इतना ऊंचा नहीं था, जितना भी था आम आदमी और खास आदमी में खास फर्क नहीं था। आज पैसे वाला कहाँ चला गया और गरीब कहाँ रह गया, वो भी ये 34 साल में हम जो देखते हैं वैसा भी शायद तारीख में कभी, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इस हालत में जबकि मादियत शिद्दत पैदा कर चुकी है, जिसके पास पैसा है वो अकलमंद भी नजर आता है, चाहे वो पैसा कोशिश के जरिए आया हो या धोखे के जरिए आया हो, पैसा अपनी खुद की एक हैसियत पैदा कर लिया है, वो आगाह हो गया है और हम गुलाम हो गए। ऐसी सूरत हाल में आप लोग खुम जाने का आजम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है कि आप लोग कर रहे हैं, मगर दिल में टटोल लें कि दिल में इसी मादियत की हरकत को आप खुम में जाके तय करेंगे या आपका इरादा मानवियात है, आप अपनी रूह को तैयार करने के लिए खुम जा रहे हैं या आप उन चीजों को याद करने सीखने के लिए जा रहे हैं कि जो आपको मादी तरक्की देंगे। जो शख्स इस नीयत से जाता है, मैं बिल्कुल वाजे कर बोल रहा हूं, जो इस नीयत से जाता है कि हम खुम से मादी तरक्की के असबाब हासिल कर वापस आएंगे, वो अलग तरीके से पढ़ता है खुम में। और जो सोचता है कि नहीं, मैं यहां पर मादी असबाब हासिल करने के लिए नहीं, उसके लिए तो हिंदुस्तानी ठीक था, मैं कुछ कर लेता, वहां पर पढ़ लेता, लिख लेता, कारोबार कर लेता या और कोई कुछ काम कर लेता तो मुझे मादी तरक्की मिल जाती है। मैं यहां पर इसलिए जा रहा हूं कि मुझे मादे के आगे सोचना है। अगर इस नीयत से जाते हैं तो फिर एक दूसरी ही दुनिया आपको खुम में मिलेगी, एक दूसरी ही दुनिया आपको खुम में मिलेगी। नहीं तो अगर मादियत मटीरियलिज्म के लिए जा रहे हैं तो वो खुम आपके लिए खुम ही नहीं रहेगा, आप वहां से कयाम करने वाले नहीं बनेंगे, لوگوں کو قیام کی طرف آگے لے جانے والے نہیں رہیں گے، لوگوں کو سلانے والے بن جائیں گے، کیونکہ جو خود سو گیا ہے وہ دوسروں کو کیا جگائے گا؟ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب اور تمدن، ویسٹرن سویلائزیشن کا مارا ہوا اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے، کشتے او زندے دونت خیشرا، اس کا مارا ہوا اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے. تو موت بھی آ جاتی ہے پر پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اللہ کی نظر سے مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو جو حیات دی وہ مادیت سے آگے بڑھنے کے لیے دی. انسانی حیات کا مفہوم ہی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیتیں آپ کو مل جائیں گی، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صاف صاف سی بات ہے، ورنہ بیل بنا دیتا جو چڑھتے رہتے، چار پیٹ بناتا ان کے جیسے ہمارے بھی، کہ کھاتے اور پھر نکالتے اور پھر چاپتے اور پھر کھاتے، چڑیا جیسی چیز بنا دیتا، چڑیا اپنے وزن کا اتنا دانہ اپنے دن بھر میں کھا لیتی ہے. ہم 60 کلو کے اگر ہوں تو ہم جتنا کھاتے ہیں 60 کلو کھا لیتے ہیں کیا دن میں؟ ٹھیک ہے، 3 کلو کو کھا جائے تو شاید 4 دن 5 دن کے بعد اس کی فاتحہ پڑھ لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ 3 کلو بھی اگر کوئی آدمی کھانا کھا لے، یعنی 1/20 بھی اگر ہم جتنا ایک چڑیا کھاتی ہے اپنے وزن کا کھا لیتے ہیں تو ہم مر جائیں گے. تو پتا چلا کیا؟ اللہ نے ہم کو مادیت کے لیے پیدا نہیں کیا، مانویت کے لیے پیدا کیا. تو پھر بات یہ ہوگی کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھوکے مرنا چاہیے. میں مرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ مرنے کی طرف بلا نہیں رہا آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. وہ تو آپ کو موت کی طرف بلا ہی نہیں رہا ہے، مرنے کے بعد بھی موت دیتا نہیں ہے، آپ کو حیات کی طرف بلا رہا ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ حیات کی طرف بلا رہا ہے، ہم حیات کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم جب حیات کی طرف بھاگیں گے تو وہ حقیقتاً موت ہوگی، اور وہ جس کی طرف بلاتا ہے وہ حقیقتاً حیات ہوگی. سوال اپنے اپنی سمجھ کا اور یقین کا ہے، سوال اپنے اپنے سمجھ کا اور یقین کا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، انسان سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز اس کے لیے کیا ہے، وہ کیا بولے گا؟ اپنی مادی حیات کے لیے پوچھ رہا ہوں، مادی حیات کے لیے کیا ہے؟ آپ لوگ بولیے. بالکل ٹھیک کہا نا آپ نے. کبھی آپ نے سوچا کہ مجھے ہوا کی قلت ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی ہوا کی میرے پاس؟ آدمی سے سب سے چیز لے لی جائے تو سب سے آخر چیز وہ کہے گا کہ مجھ سے سانس لے لو، ہوا لے لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنا کھائے ہوئے بھی، بغیر پانی کے بھی آدمی 15 سے 20 دن زندہ رہ جاتا ہے، بے ہوش ہو جائے گا 3-4 دن 5 دن کے بعد، لیکن زندہ ضرور رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن بنا ہوا کے کتنی دیر؟ 5 منٹ 10 منٹ میکسیمم، 5 منٹ 10 منٹ دماغ کو آکسیجن نہیں پہنچتا اور دماغ مر جاتا ہے، اور پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے آپ کی ضروری چیز ہے آپ کی حیات کے لیے ہے، وہ اس نے کتنے مقدار میں رکھی ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی عاقل کو بھی یا کوئی آج تک پاگل کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو یہ سوچے کہ مجھے ہوا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اور ہوا کے لیے تگودو کرے. ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس کے بعد والی ضرورت سب سے زیادہ پانی. پانی بھی آپ کسی غریب کے گھر چلے جائیے، یہاں پر آجو بازو پانی مانگیے، وہ پلا دے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کی جھوپڑی میں جا کر مانگیے، پلا دے گا. پیسے کی توقع کرے گا ہی نہیں، امید بھی نہیں کرے گا کہ آپ اس کو ایک گلاس پانی پی کر پیسے دیں گے، اور شاید آپ بھی پیسوں کی بات اس سے نہیں کریں گے، بھائی پانی لیا اور پیا اور چلے گئے، شکریہ کہہ دیں گے. پیسوں کے عوض پانی آپ मिनरल वाटर के नाम पर धोखे के साथ खरीदेंगे, लेकिन पानी आज भी गरीब को भी मुयसर है कि जो खुद पी सकता है और आपको हमको पिला सकता है। जो तो दूसरी अहम चीज थी वो भी आपको जिंदा रखने की, उसका जिम्मा भी अल्लाह ने ले लिया है। हवा की किल्लत ईजाद कर सकता था, पानी की किल्लत इस किस्म की कर सकता था, कहता है कुरान, मगर वो नहीं किया। अब आ गई बात गजा की, तो ये कहां से आपको तसव्वुर आ गया? हमको तसव्वुर आ गया कि गजा उसने हमारे लिए नहीं रखी है, हवा रख दी है, पानी रख दिया है, लेकिन गजा हमारे लिए नहीं रखी है, हमको खाना नहीं मिलेगा। किसने कहा था ऐसा नहीं हो? कुरान की आयत आकर कहती है मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु इन्नल्लाह बालिगु अम्रे कुल्ले शाइन खदरा। सब आप लोग को पता है, हम जब घूम जा रहे थे हमको ये आयतें नहीं आती थी, हमको ये आयतें नहीं आती थी, हमने आयतें खुम में सीखी। तो आप लोग तो दो कदम चार कदम आगे जा चुके हैं, मगर हम जब खुम को जा रहे थे तो ना हमको ऐसे अफराद मिले कि जो आपको हाथ पकड़ कर ले जाएं, हमको ऐसे अफराद जरूर मिले कि जो जिन्होंने पूरी कोशिश की कि हम खुम न जाएं, और जब वापस आ गए तो अफसोस किया कि हमने इनको जाने क्यों दिया। ये माहौल से हम गए, तो आप लोग माशाल्लाह से खुश नसीब हैं एक उनवान से कि आपको ये कुरानी आयतें जो हम वहाँ पर सीखे वो आप पहले से जानते हैं, तो आप एक दूसरे दर्जे पर फायज हैं, अभी आगे चलकर और ऊंचे दर्जे पर फायज होंगे। तो जब अल्लाह ने हयात की तरफ बुलाने का, हयात के अस्बाब फराहम करने का, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए हमारे लिए रख दिया है, तो रोटी के लिए हम अगर फिक्रमंद हों, यह हमारा यहाँ पर सबका बैठना इस बात की दलील है कि हमको ज़िंदगी में खाना खिलाया गया है उस वक्त से कि जब हम एक मक्खी को भी भगा नहीं सकते थे, उड़ा नहीं सकते थे अपने ऊपर से। वो किसके ज़रिए हुआ? माँ की ममता के ज़रिए से ही हुआ, ठीक है, बाप की मोहब्बत के ज़रिए से ही हुआ, लेकिन हुआ तो ये हमारा यहाँ पर बैठना इस बात की दलील है कि हमको खाना मिलता रहा है। ये क्या होता है कि ईमान जब आ जाता है इंसान को, वो एहसास ये करने लगता है कि भाई खाना नहीं मिलेगा। माँ के पेट में खाना कौन देता था? अल्लाह ताला देता था। सबसे अच्छा रिस्क उसके बाद किसने फराहम किया? अल्लाह ताला ने फराहम किया। उसकी रहमत कब आकर रुक गई? कब आकर उसकी रहमत रुक गई? जैसे हमारे हाथ पैर मजबूत हो गए, हमें एहसास होने लगा कि अब अल्लाह की रहमत हम पर कम हो गई है। इसका कसूर हम हैं या इसका कसूर हम अल्लाह पर बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। तो पता चला कि जैसी रहमत जब हम मां के पेट में थी वो अगर हम उसके होते हैं तो वहां पर तो हमने किया कुछ नहीं था, तब भी थी। अब अगर उसके लिए कुछ करते हैं खुरबतन इल्लाह, तो वो रहमत इजाफा होगी या घटेगी? ठीक है, जो लोग यहां पर बैठे हैं जिसके बच्चे हैं, फर्जंद हैं, बच्चा अगर, या आप लोग अगर कोई छोटा आपका भाई भांजा भतीजा जिसको भी जो हो कोई चीज अपनी लाकर आपको एक चॉकलेट दे देता है, ठीक है, आप ले लेते हैं, आपका इरादा जहन में क्या बनता है? इससे बेहतर चीज उसको दे दूंगा। आप खुश हो जाते हैं कि उसने जो चीज खुद खा सकता था वो आपको ऑफर कर रहा है। आप लेंगे या ना लेंगे उस हालत में होगा कि उसके लिए और कुछ है या नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज। लेकिन जब आप लेंगे या नहीं भी लेंगे, वो एहसास खुद इस बात की दलील है कि जब आप एक इंसान होने के नाते अपने से छोटे की तरफ से एक चीज आपके सामने आती हुई देखते हैं, वह उन्वान मोहब्बत। तो अल्लाह को अगर इंसानों की मोहब्बत मिल रही हो, इनकुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह से ही बात रसूल की आती है। मैं शरीयत की तरफ अभी आया ही नहीं हूं, मैं खाली हुब्बे खुदा ही की तरफ हूं, अभी रिसालत पर नहीं आया हूं। अगर वो कैफियत हुब्बे खुदा की आ जाती है और हमारी नमाजें, हमारा अमल, इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन हो जाते हैं, तो फिर उसकी रहमत का तूफान आएगा या नहीं आएगा? नहीं आने का इम्कान नहीं है। जो हम मामूली इंसान होकर अपने छोटे का लिहाज दिल से रखते हैं, तो वो सबका खालिक, रहमती वसीअत कुल शय वाला, मेरी रहमत तमाम चीजों पर अहाता किए हुए है, वो किस तरह से हमको छोड़ देगा? वो देगा कि जो और किसी को नसीब नहीं होता है सिवाय अल्लाह ही से डायरेक्ट हासिल करने के, जो किसी अरबपति को भी नसीब नहीं होता, जिसको कुरान कहता है ये हयावान है, ये हकीकी जिंदगी है, वो जिंदगी की तरफ आप लोग हरकत कर रहे हैं। वो जिंदगी है कि जो मादियत के आगे जाने के नतीजे में मिलती है, और वो जिंदगी का अगर एहसास हो जाता है तो ये कायनात की पूरी दौलत अगर आपके पैरों पर लाके डाल दी जाए, एक सेकंड उससे इर्तिबात आप काट लीजिए, एक सेकंड आप इनकार करेंगे। हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, आपसे कहा जाएगा कि एक सेकंड के लिए अगर आप इर्तिबात इस तरीके पर, इस रविश पर, आपकी मावराए मादी या इलाही जो इर्तिबात है, एक सेकंड के लिए आप कट कर दीजिए, हम आपको पूरी कायनात दे देंगे। आप कहेंगे ये और ये बराबर, वहां तक जाया जा सकता है, उसके आगे भी जाया जा सकता है। अल्लाह ने किसी के पैर नहीं बांधे। अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये अल्लाह का रास्ता कभी भी ताकीद के साथ अल्लाह कह रहा है लनहदियन्नहुम सुबुलना, ताकीदों पर ताकीदें हैं। ताकीदें इसलिए है कि हम जल्दी बावर नहीं करते, जल्दी यकीन नहीं करते, करेगा या नहीं करेगा नहीं मालूम, चौरस्ते पर ले जाकर कहां छोड़ देता हमको पता नहीं है, फिर वहां पर हम हैरान हो जाएंगे तो बुलाएंगे किसको, अब तो मां बाप भी नहीं, हम तो बड़े हो गए हैं, बीवी को पुकारना तो अच्छा नहीं लगता, तो हमारा तो कोई सहारा नहीं रहेगा, ऊपर वाले रहे नहीं, नीचे वाले से मांग नहीं सकते, तो फिर अल्लाह कहां चले गया? हम अल्लाह को खोकर परेशान होते हैं, वो हमारे पीछे पीछे ढूंढते हुए आता है, उसका ढूंढना ही सबब बना रसूल और अहले बैत का। अगर बंदों को उसको पा लेना ना होता तो ये अंबिया आते ही नहीं थे। अल्लाह की ढूंढ का नाम पैगंबर होते हैं, अल्लाह की ढूंढ का नाम आइमा होते हैं। वो अपनी तलाश के लिए उनको भेजता है कि जाओ मेरे बंदों को, कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, और हमने तुम्हें वहां से नजात दे दी। तो एक एक कुरान की आयत आपको मुर्तबित होती नजर आएगी। हाफिज का एक शेर है, इल्म रॉ बर्तन जरी जनी मौरी बुआद, इल्म रॉ बर दिल जनी यौरी बुआत। इल्म को अपने तन परस्ती पर अगर इस्तेमाल कर दोगे तो यह सांप बन जाएगा, मार बन जाएगा, और यही इल्म को अगर तुम अपने दिल पर दे मारोगे, दिल से मुराद यहां रूह है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन मददगार हो जाएगा। अब आप लोग जो मादी दुनिया से हरकत कर रहे हैं, ये मादियत फैल रही है, शिद्दत से बढ़ रही है, मादी लोगों ही को कामयाब समझा जा रहा है, मानवियत का और रूही उलूम का फुकदान है, तो ऐसी हालत में जब अंधेरा और उजाला तकरीबन अलग अलग हो चुके हैं, जो हमारे दौर में उस वक्त नहीं था, मादियत ऐसी नहीं थी, मादियत की इंतहा हो सकती है, हम ख्वाब में नहीं सोच सकते थे, 1990 में भी नहीं सोच सकते थे, जो 20-25 साल में हुआ है। अब यह खत्तबैन रुजनो मिनल गई वाली कैफियत हो गई है। आपकी अपनी चॉइस है कि करना क्या चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि करना क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हर छठा आदमी दुनिया में हिंदुस्तानी है, हर छठा आदमी, यानी आपको 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी में काम करने का मौका मिल रहा है, और भी जाके कीजिए काम अगर करना हो, लेकिन एक बिना पासपोर्ट बिना वीजे के, बगैर पासपोर्ट और वीजे के आप जाकर तकरीबन 1/6 ह्यूमन पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। अब आप समझेंगे कि नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है, हम अपने महल्ले को देखेंगे, हम अपने शिया बस्तियों ही को देखेंगे। अगर ये जहन लेकर जाएंगे तो वही जरूरत के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर कर आएंगे। जबकि कुरान की आयत है, इज़ा अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताब लतुबय्यिनन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूना, अल्लाह ने उनको कि जिनको उसने किताब दी है उनसे ये वादा ले लिया है, मीसाक ले लिया है कि वो यकीनन यकीनन लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों में सब शामिल हैं, लोगों में सब शामिल हैं। रसूल किसके दरमियान आए थे, मोमिनीन के दरमियान या मुशरिकीन के दरमियान? हमारे यहां तो कम से कम कुछ मोमिनीन और कुछ मुशरिकीन है या नहीं? गरचे उस दौर में भी कुछ मोमिनीन थे, अल्लाह ने कहा है कि कुरान में कि अल्लाह ने मिन्नत की है मोमिनीन पर कि उसने उनके दरमियान रसूल को भेजा। ठीक, तो अब हम अगर ये सोच कर जा रहे हैं कि हम एक छोटी सी महदूद ग्रुप में काम करेंगे, तो आप इस्लाम के मैसेज को अपने हिसाब से छोटा करते जा रहे हैं। इस्लाम का मैसेज आफाकी है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क माना जाता है, वहां पर एक भी जंग नहीं हुई, एक भी जंग नहीं हुई, और 90% से ज्यादा वहां की आबादी मुसलमान है, एक भी जंग नहीं हुई, जो लोग कहते हैं तलवार के जरिए, और वो पूरे जजीरे हैं, 1000 के करीब जजीरे हैं वहां पर। अच्छा, आपको ताजुब होगा कि सबसे बड़े मुबल्लिग कौन थे कि जो इतनी बड़ी तब्दीली में उनका बड़ा हिस्सा रहा, उनका नाम था मौलाना विष्णु। मौलाना विष्णु, मौलाना विष्णु हिंदू थे जब मुसलमान हुए और मौलाना कहलाने लगे, लोगों ने उनको मौलाना कहा, और उन्होंने जो तबलीग की वो सबब बना इंडोनेशिया में इस्लाम की तरवीज का। तो जब कोई गैर जिसकी समझ इब्तदाई होगी, बहुत ज्यादा तफसीली नहीं होगी, वो जब इस्लाम समझ कर समझा सकता है, तो आप हम क्या नहीं कर सकते कि जिसकी पैदाइश से हम इस्लाम सुन रहे हैं, और वो इस्लाम सुन रहे हैं जो पाक तरीन इस्लाम था, गरचे इज्तिमा में आकर वो शक्ल बिगड़ चुकी है और वैसी कैफियत पाकिजगी की जो है युताहिरकुम तथीरा वाली थी, अल्लाह ने तो पाक रखा था जैसे कि पाक रखने का हक है, उनकी फिक्र को लेके हमने क्या किया हम जानते हैं। और अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो वो ईमान की कुदरत से हरकत करने वाली सोसाइटी नजर नहीं आती, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी नजर आती है कि जिसके ईमान में इतनी मिलावट हो चुकी है कि ईमान कहाँ है और कुफ्र कहाँ है, अलग अलग करना अब मुहाल सा हो गया है। ईमान जब मखलूत होता है तो अपनी वैल्यू खो देता है। दवा में सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है वो 99% प्योरिटी के आगे ले जाना सबसे मुश्किल होता है। जब फिल्ट्रेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो सबसे मुश्किल मरहला प्योरिटी अब 99% तक ला लें, उसके आगे की प्योरिटी के लिए करना पड़ता है ताकि दवा का असर हो सके। तो जब एक मामूली एलोपैथिक दवा अगर 99% के लेवल पर असर नहीं कर रही है या कम असर कर रही है, तो ईमान जो उससे कई गुना बल्कि लामुतानाही तौर पर अलग और जुदा और बुलंद है, उसमें मिलावट अगर लाई जाएगी, उसकी हरकत होगी या नहीं होगी, ये प्योरिटी समझने के लिए आप लोग खुम जा रहे हैं। मिलावट तो यहां पर आपने देख ली, प्योरिटी को आप वहां समझने के लिए जा रहे हैं। प्योरिटी आपके अंदर नहीं रहेगी तो बाहर की प्योरिटी आप पर असर नहीं करेगी। आईना चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उस पर आप कोई चीज डाल दें उसके बाद चाहे कि वो अपनी खूबी जाहिर करे, तो लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे पहले उस पर से वो कपड़ा हटा दो, हम अपनी रूह पर खूब कपड़े मोटे मोटे पर्दे डाल देते हैं और उसके बाद तवक्को करते हैं कि अल्लाह की रहमत उसमें से नफूस करके आए, जबकि आपसे अल्लाह की रहमत ये कह रही है कि तुम्हारे और मुझ में फासला ही नहीं है, ये पर्दे क्यों है। नहीं कुरान की आयतें क्या कहती है, कुरान इन्नी करीब उजीबु दावत दाई जदान, ठीक है मैं तो तुमसे करीब हूं, इजा सअलक इबादी अन्नी कुल इन्नी करीब, अब उजीबु दावत दाई। अच्छा अब दुआ क्या करते हैं, जिसके सौ वास्तों की जरूरत है, तवज्जो का मोहताज, मुझे ये दे दे ये दे दे ये दे दे ये दे दे ये दे दे, उसमें सौ वास्तों की जरूरत है, ठीक है पैसे दे दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, ये सब वास्ते से होगी, शोहरत आएगी कैसे, लोग आपको मशहूर समझे, लोगों के मोहताज, ठीक। पैसा चाहिए किसी के जरिए से आएगा, या कम से कम कोई आपको खजाना भी मिले तो कोई बेचारा आपने मेहनत से वहां पर दफनाया होगा आपको मिलेगा, बिलाखिर कुछ ना कुछ वास्ता होएगा होएगा। शादी करना चाह रहे हैं, कम से कम जो शादी कर रही है उसको या कम से कम उसके बाप को राजी होना चाहिए, ठीक है। ये सब की तो दुआ चल रही है, जो चीज आप और खुदा के दरमियान है जो बगैर किसी रुकावट के मिल सकती है उसकी दुआ ही नहीं होती, हाँ वहां पे तो रुकावट ही नहीं है ना, आप ईमान मांग रहे हैं, ईमान देने में अल्लाह को मोहताज है कोई के भाई फलां के जरिए से ही दूंगा, आपके दिल को मुनव्वर करना है, आपके गुनाहों को बख्शना है, ये कोई वास्ते की जरूरत है क्या अल्लाह को, वो दुआएं नहीं करते जो डायरेक्टली मिल सकती है। मैं नहीं कहता कि वो दुआ मत करें, ठीक है वो दुआ मत करें ना, अल्लाह भी नहीं कहता कि वो दुआ ना करें, मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी किसको देंगे आप, प्रिफरेंस किसको देंगे आप, औलवियत किसको देंगे आप, ये चीज दुआ कैसे करना सीखने के लिए खुम जा रहे हैं, ठीक है। चीजें छोटी छोटी हैं, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन उसको समझना उतना आसान नहीं है जब तक कि अपनी अपने आप को थोड़ा जुदा कर कर न सोचे और अल्लाह की रहमत में अपने आप को हमेशा डूबा हुआ एहसास न करे, फिक्र रोटी की न करे, रोटी वो पहुंचाएगा। रसूल को नहीं कहता है क्या, ए रसूल हमने तुमको क्या क्या नहीं दिया, वजदका वाह 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 वजदका ज़ाल्लन मोहताज हिदायत, हमको सबको हाजत है ना हिदायत की, तो रसूल को कह रहा है हमसे उसका क्या ताल्लुक, रसूल को इसलिए कह रहा है कि रसूल मिज़दाक बन रहे हैं और मिज़दाक तक आयत महदूद नहीं होती, ये सीखने को आपको खुम जाना है कि कोई आयत का मिज़दाक उसका मुखसिस नहीं होता, उसे मखसूस नहीं, वो आपके लिए भी है, बात रसूल के जरिए से हो रही है ताकि वो वाज़े अजहर मिसाल बन जाए और आप पर, वरना आपके लिए क्या हिदायत है, रसूल को किया मेरे को करेगा नहीं करेगा नहीं मालूम, तो ठीक है मैं वो रास्ता चलूं क्यों, ठीक है। तो हिदायत की, मादी मदद की, ये पूरी जिम्मेदारी लेकर कह रहा है मेरे होकर बतला दो, हम कहते हैं पहले वो हम पक्का कर लें तो हम तेरे होते हैं, ये अल्लाह को शर्त शय पसंद नहीं आता, मैं इस शर्त पे तेरा हो जाऊंगा, ये दुनियावी चीजों में अच्छा लगता है, ये शर्त पर हम आपकी बात मान लेंगे, चाहे वो मोहब्बत हो या सियासत, ना अल्लाह इस किस्म की मोहब्बत पसंद करता है ना इस किस्म की सियासत पसंद करता है। और हमारे पास सबसे अच्छी मिसालें मौजूद हैं कि जो बगैर शर्त अल्लाह की खुर्बत के लिए और अल्लाह की खुशनूदी के लिए कोशिश करें, हमारे पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है कि जिसके लिए हम ये शक करें कि उसने अपनी इलाही हरकत में कोताही की हो, दूसरों के पास ऐसी प्योर मिसालें नहीं है, युतहरकुम तथीरा वाली मिसालें नहीं है। तो सरमाया जो हमको मिला है वो बहुत ज्यादा है, एहसास की कमी है, आदमी के हाथ में हीरा हो अगर वो समझे कि ये हीरा नहीं है तो उसको वो क्या करेगा, कहीं भी फेंक देगा, कोई उठाकर ले जाता है तो ले जाए, मुझे क्या करना है। हमने अहले बैत की तालीमात के साथ यही किया है, घर की मुर्गी दाल बराबर समझा और उनके तालीमात को सुबुक समझा और हर चीज की तरफ दौड़े सिवाय उनके तालीमात के लिए। आप लोग उसको रविश को तोड़कर वो काम के लिए जा रहे हैं जो हकीकतन करना चाहिए। आखिरी और दो मिनट लूंगा। तीन सतह पर जिंदगी होती है, एक तो बदनी सतह पर, दूसरे इल्मी सतह पर, साइंस के हद तक आप उस इल्म को लेकर चलें। फारसी में जब इल्म कहा जाएगा आप ईरान जाएंगे, इल्म से मुराद वो लोग साइंस लेते हैं, साइंस लेते हैं यानी मादी उलूम लेते हैं, जाहिरी तौर के ऊपर जब इस्तेमाल करते हैं फारसी जबान में आजकल। उसके फिर आगे का मरहला होता है जो रूह का मरहला होता है। तो एक बदन, एक दिमाग माइंड और एक रूह, स्पिरिट सोल जो भी बोलिए। जो आदमी एक लेवल पर रहता है जबकि उसको इल्म में मादी से भी रब्त नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बिल्कुल इल्म से जाहिल है। जानवर वाली सतह का उसको एहसास है, वो उससे आगे नहीं सोच सकता। उसके बाद का मरहला आता है, जो मरहला है दिमाग को इस्तेमाल करने का। बदन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा मुहिम है, वो आदमी जो दिमाग को इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो भी अगर दिमाग को उससे ऊपर वाले सतह तक नहीं ले जाता है सोच में अपनी, मैं अभी ले आ रहा हूं बस, तो वो फिर पलट के मादियत की तरफ आता है। थोड़ी सी तफसील करूंगा। निकला कुछ नहीं जानता था, ठीक है, आयत है ना, खलकुम अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमुना शैया, यहां से निकला कुछ इसी पे बाकी रह गए, ना जाना कुछ ना थोड़ी सी चीजें जान ली जो आमतौर पर जानवर भी बड़ा होकर जान लेता है, ठीक है, अपनी मादी ख्वाहिशात, अपनी शहवी ख्वाहिशात, ये पूरी उसने मुकम्मल कर ली। एक ने नहीं, उसने आगे बढ़ा, मादी उलूम उसने हासिल किए, ठीक है, और उन मादी उलूम को से पैसा भी मिला, शोहरत भी मिली। ऐसी मिसालें कुरान में आपको कारून की मिलती है कि उन्होंने खूब अपने इल्मे कीमिया के जरिए से कमाया और एहसास किया कि ये मेरे इल्म का नतीजा है। उस इल्म की हकीकत से वो आगाह नहीं हो सके कि ये इल्म मुझे मिला क्यों, मेरी खिलकत उस शक्ल की हुई थी कि मुझ में ये इल्म समोया जा सकता था और मुझे अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया। और जब अल्लाह ने रसूल के जरिए से ये तकाजा किया कि तुम अपनी ये दौलत से मुंह मत फेरना, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ने तुम पर अच्छाई की है, एहसान किया है, एहसन कमा एहसन अल्लाह इलैक, जैसा अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है एहसन अल्लाह इलैक, तुम भी दूसरों पर करो, तो उनको पसंद नहीं आने लगा क्योंकि वो पैसा उनकी शिनाख्त बन गई और पैसा वो कैफियत की चीज़ है कि जो आपको पलटा कर इल्म से फिर मादियत की तरफ ला देता है। तो हुआ क्या, हम जब मादियत की बात करते हैं 34 साल में हमने जो देखा, एकदम मादियत की तरफ, मटेरियलिज्म की तरफ पुश हुआ, उलूम बढ़े, हर अलग अलग किस्म की चीज़ें टेक्नोलॉजी की शक्ल में आने लगी। कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि हम फ़ोन पर बात करते हुए फोटो देख सकेंगे तरफ की, आज तो बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, पैसा भी नहीं हो रहा है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं कि आदमी तो अगर 3 मिनट बात करता अमरीका को तो उसकी 1 महीने की तनख्वाह चली जाती, 3 मिनट बात करने पर, 3 मिनट बात करने पर 1 महीने की तनख्वाह खत्म हो जाती। तो लोग मरने की खबर देने के लिए, इस किस्म की इमरजेंसी के लिए फोन इस्तेमाल करते थे, इतना महंगा था, ठीक, आज ये बिल्कुल हो गया। तो हुआ क्या, जैसे ही ये उलूम, साइंस से मुराद ले रहा हूं, इलाही याद की बात नहीं कर रहा हूं, उलूम यहां तक पहुंचे और फिर वो आगे वाली हरकत नहीं हुई, पलटकर फिर और मादी होते गए, तो आपका दायरा शुरू हुआ ला तालमूना पर और खत्म हुआ ला तालमून पर। आपने वो हरकतें की हैं कि अगर आप दूर से फोटो लेकर देखें तो अकल की वहां जरूरत नहीं होती। आज के जो मॉडर्न डांस हैं, ये मॉडर्न म्यूजिक है, इसके अंदर सिवाय मादी शहवतों को आगे बढ़ाना, और अगर कोई नहीं जानता हो तो एक अलग किस्म का बंदर नजर आएगा आदमी, जो जिसकी इतनी तारीफ होती है और इतना उसको बड़ा बतलाया जाता है। तो गए निकले थे मादियत से, उलूम के जरिए से पलट कर मादियत की तरफ वापस आ गए। अल्लाह इनको इस मकसद के लिए खल्क नहीं किया था। उलिल अलबाब उन लोगों को अल्लाह कह रहा है, अल्लज़ीना यतफक्करूना फी खल्क़ समावाती वल अर्ज़, ठीक है, उन लोगों को। इसलिए उलिल अलबाब कौन है कि जो खल्क़ समावात और अर्ज़ के बारे में सोचते हैं। ये चीज जब सोचते हैं तो अपनी यकीन को अल्लाह पर जाहिर करते हैं, तो अल्लाह उसको कोट करता है, मा खलकता हाजा बातिला, यानी अल्लाह को सर्टिफिकेट दे रहा है और अल्लाह तारीफ कर रहा है कि मैंने तुझे इसलिए बनाया था, तुझे लुबा दिया था, दिमाग दिया था, ब्रेन दिया था, ताकि तू खल्क समावात और अर्ज पर फिक्र करे, खल्क पर, और फिर कहे कि ये तूने बातिल खल्क नहीं किया, यानी मतलब आजमाइश के लिए खल्क किया है। आगे की आयत फकीना अजाबन नार, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले, हम तो जहन्नम की आग के अतराफ हमारे उसमें जी रहे हैं, तो हमको तू ये समझ दे दिया कि हम खल्क समावात और अर्ज के बारे में सोच सकते हैं और पलट कर कह सकते हैं कि तूने बातिल नहीं की खल्क किया। सुबहाना का तू तो पाक है कि तू ये कोई चीज बातिल खल करे। जब अल्लाह की पाकिजगी का यकीन हो जाता है तो मादियत कोई माना नहीं रखती, वसीला बन जाती है, बदन वसीला बन जाता है, दिमाग वसीला बन जाता है, और उसके बाद जो रूह उस दिमाग से वो काम लेती है जो अल्लाह चाहता है कि ले, क्योंकि अल्लाह से जुड़ जाती है, बदन से वो काम लेती है कि जो अल्लाह चाहता है कि ले, तो बदन और दिमाग दोनों अल्लाह की रास्ते पर चलने के लिए मुमिद व मुआविन साबित होते हैं, और इंसान एक के बाद एक उन मराहल को तय करने लगता है कि जो एक मादी और जाहिरी इल्म रखने वाले साइंटिस्ट की काब में भी नहीं आ सकते, और उसी के जरिए से पलट कर इसी मादे को देखता है तो उसके खल्क की तरफ जाता है, और खल्क के बारे में मालूम करना आज के जमाने भी सबसे मुश्किल इल्म है। ये दुनिया इस बनी कैसे, अल्लाह कहता है वहां क्या? आपको फकत कयामत तक सोचने का नहीं है, आपको इब्तिदा के भी सोचना, क्यों कि वल अव्वल वल आखिर व जाहिर वल बातिन, ये सब इंट्रोड्यूस इसलिए करा रहा है कि तुम पलट कर जाओगे खिलकत के तो फिर मुझे पाओगे, कयामत का भी सोचोगे तो मुझे पाओगे। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तो तुम्हारे साथ है कहीं पर भी तुम रहो। अब क्या चाहिए, खुदा छोड़ना नहीं चाहता, हम छोड़ के भागना चाहते हैं, जो हमसे भागते हैं हम उनके पीछे जागते हैं, दुनिया हमसे दूर होती है हम दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, और दुनिया का खालिक हमारे साथ साथ आना चाहता है। भाई हुआ माँ को महीना माँ कह दूंगा मतलब मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं, हम कहते हैं हमको नहीं चाहिए। ये इल्म का नतीजा है या जहल का नतीजा है, गुरूर का नतीजा है या एहसान को कबूल करने का नतीजा है, उसके बनकर उससे पीछा छुड़ाने की ख्वाहिश। अगर कोई अपने माँ बाप को छोड़ दे जिन्होंने उसको बड़ा किया हो, और ऐसी हालत में छोड़े कि वो लोग मोहताज हों, तो आप और मैं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई लफ्ज भी नहीं बना होगा कि जो उसको पूरी तरीके से बयान कर सके, तरसीम कर सके, ठीक है। अब बोलिए खुदा को हम वही करके छोड़ रहे हैं, फकत यह है कि वो मोहताज नहीं है, गरज हमारी थी ना कि उसकी। माँ बाप कभी हो सकता है कि इसी हालत में आ जाए कि उनके लिए कोई ना हो देखने वाला, फकत इसलिए कि अल्लाह को देखने वाले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को छोड़ देना चाहिए। बोलिए, वो तभी हो सकता है जब हम सोचते हैं कि अल्लाह को हमको देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को हमको देखने की जरूरत नहीं है जब हम सोचते हैं ना, तब हम ये करते हैं, क्योंकि वो तो मोहताज नहीं है। हुवल गनी अंतुमुल फकरा, ठीक, उसकी गिना हमारा फकर हमको अगर एहसास हो जाए तो उसका हम साथ छोड़े ही ना, ना उसके गिना का यकीन है ना अपने फकर का यकीन है, चौपट हो गया है सब, उलट पुलट हो गया है, गलत मलत हो गया है। یہ سب چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ لوگ خوب جا رہے ہیں. اللہ آپ لوگ کو موفق کرے اور کامیاب کرے, اور آپ لوگوں کے دل میں جو روشنی ہے اس میں اور اضافہ ہو, اور اساتذہ سے جو آپ لوگ وہاں سیکھیں گے, قم کا بہترین ماحول ہے عبادتوں کے لیے اور تعلیم کے لیے, بہترین ماحول ہے, پاک ماحول ہے, اس ماحول سے فائدہ اٹھائیے. وہ ماحول پلٹ کے آ کر واپس ہم کو یہاں پر ملنے والا نہیں ہے. اتنے مضبوط ہو کے آئیے کہ اگر آپ کو بالکل اس کے مقابل ماحول میں ڈال دیا جائے تو وہاں پر آپ تاثیر چھوڑیں گے, اثر نہیں لیں گے, اپنا اثر چھوڑیں گے, اثر نہیں لیں گے. وہ اگر کیفیت کے بغیر اگر آپ واپس آ گئے تو گھل جائیں گے ہندوستان میں آ کر, اور وہی دور ہو جائے گی. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق. وہ والا مومن بن کے, یہ دوسری آخری جملہ, قرآن کی اہمیت کو سمجھیے. مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے, ہم تو انی تارکم فیکم الثقلین کہتے ہیں, ثقل اول جو ہے وہ ثقل اول قرآن ہے. تو اور یقیناً جب آپ قرآن کی طرف جائیں گے, محنت کریں گے, حوضے میں قرآن کو بغیر اہل بیت کے نہیں پیش کیا جاتا, تو اہل بیت کی ہی قرآنی روش کو آپ وہاں پر حاصل کر سکیں گے. تو قرآن کو مرکز بنائیں. اقبال کا قرآن کے بارے میں ایک جو شعر ہے پڑھ دیتا ہوں. فاش می گویم آنچے در دل مزمر است, ان کی توبی نیست چیزیں دیگر است. کھل کر بول دیتا ہوں کہ جو دل میں پوشیدہ ہے یہ قرآن کتاب نہیں ہے, کچھ اور چیز ہے. اس کی اہمیت سمجھے, ہم کو بہت دیر میں سمجھ میں آئی, آپ لوگ ابھی جوان ہیں, اس کو سمجھ لیں, بہت ہے اس میں دینے کے لیے. اس لیے میں نے قرآن کی آیتیں ہی زیادہ آپ لوگ کے سامنے تلاوت کی, بہت ہے دینے کے لیے. تفکر کی ضرورت ہے, اور ایک دوسرے سے شیئر کیجئے جو کہ دیتے ہیں. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, یاد رکھیے. آپس میں روابط بڑھائیے, محبتیں بڑھائیے, الفتیں بڑھائیے. علم کو یہ مزاج کی ضرورت ہے. حسد غصے میں علم حاصل نہیں ہوتا, الہی علم اور بھی نہیں ہوتا. تو آپ لوگ کی بھائی چارگی بہت ہی ضروری ہے. ہم سب قرآن میں پڑھتے ہیں, انما المؤمنون اخوة. یہ کیوں بنایا اخوة؟ اس لیے بنایا کہ روحی سفر میں اخوة کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جڑنا, اور جڑنے کے لیے انا سے جدور اور دوسرے کی محبت کو بڑا سمجھنا. اپنے سے تو سبھی محبت کر سکتے ہیں, دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے لیے, یہ رسولوں کی اور ائمہ کی خصوصیت ہے. ہم اگر ان کے ماننے والے میں ہم میں بھی آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد.